नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 7 के परिणाम घोषित। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 1 सीट जीती। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 2 और भाजपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में रायगंज, बागड़ा और रानाघाट दक्षिण सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। चालू वित्तीय वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.5% बढ़कर 11 जुलाई तक 5,74,000 करोड़ रुपए पहुंची। अब समाचार विस्तार से। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर बुधवार को हुए उपचुनाव में अब तक 7 नतीजे प्राप्त हुए हैं। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने जलंधर पश्चिम आरक्षित विधानसभा सीट जीत ली है। हिमाचल प्रदेश से सत्तासीन कांग्रेस ने दोहरे सीट पर कब्जा कर लिया है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने रायगंज सीट जीत ली है। अभी तक 6 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना जारी है। पंजाब की जलंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने 37,325 वोट के अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने निकटवर्ती भाजपा उम्मीदवार शीतल अंगुराल को हराया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने भाजपा के होशियार सिंह को 9,399 वोटों से पराजित किया। पश्चिम बंगाल में रायगंज से कृष्णा कल्याणी ने भाजपा के मानस कुमार घोष को 36,402 वोटों से हराकर विधानसभा सीट जीत ली। इस बीच हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार हरदीप सिंह भाभा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से आगे चल रहे हैं, जबकि भाजपा उम्मीदवार आशीष शर्मा हमीरपुर सीट पर आगे हैं। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव वाली बाकी 3 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। रानाघाट दक्षिण से मुकुट मणि अधिकारी, बागदा से मधुपर्णा और मणिकतला विधानसभा क्षेत्र से सुप्ति पांडे बढ़त पर है। बिहार में 7वें दौर की गिनती खत्म होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह 1,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर कांग्रेस आगे है। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। तृणमूल तमिलनाडु में विक्रवाणी विधानसभा उपचुनाव में डीएमके भारी अंतर से आगे चल रही है। डीएमके के अनुयूर शिवा अपने डीएमके प्रतिद्वंदी सी अंबुमणि से 40,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के गोरेगांव की इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी प्रदर्शनी केंद्र में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेलवे और बंदरगाह परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम को श्री मोदी भारतीय समाचार सेवा सचिवालय में INS टावर्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 16,600 करोड़ रुपए की थाने बोरीवाली सुरंग परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। करीब 12 किलोमीटर लंबी यह दोहरी ट्यूब सुरंग से थाने से बोरीवाली तक की यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा में लगभग 1 घंटा कम लगेगा। श्री मोदी 6,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत के गोरेगांव मुलुंग लिंग रोड परियोजना से सुरंग कार्य की आधारशिला भी रखेंगे। वे नवी मुंबई के तुर्बे में कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग और गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर एक नए प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म नंबर 10 के विस्तार को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 5,600 करोड़ रुपए की लागत वाली मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य 18 से 30 वर्ष के युवाओं को कौशल और उद्योग के अवसर प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में चयनित गांवों के व्यापक विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। कार्यक्रम का उद्देश्य इन गांवों का व्यापक विकास करना है ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके और लोगों का पलायन रोका जा सके। कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास, कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और आजीविका के अवसर पैदा करने के क्षेत्र में परिकल्पना की गई है। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रत्यक्ष कर के रूप में 6,45,000 करोड़ रुपए से अधिक कर एकत्र किए हैं। इस महीने की 11 तारीख तक 70,902 करोड़ रुपए की कर वापसी जा चुकी है। आयकर विभाग द्वारा बताया गया है कि कुल संग्रह राशि में 2,65,336 करोड़ रुपए कॉरपोरेट कर, 3,61,862 करोड़ रुपए व्यक्तिगत कर और 1,426 करोड़ रुपए अन्य कर शामिल है। पूर्ण प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगभग 20% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 5,74,000 करोड़ रुपए से अधिक है। दो दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही है। प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं और 45 से अधिक कॉलेज, संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 750 से अधिक छात्र इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान रोबोट तय समय के भीतर जटिल कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक दूसरे का सामना करेंगे। डीडी रोबोकॉन की विजेता टीम अंतर्राष्ट्रीय एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जो वियतनाम के वांगनिंग में होगा। डीडी रोबोकॉन इंडिया का उद्देश्य रोबोटिक्स के क्षेत्र में मान्यता प्रदान करके इंजीनियरिंग छात्रों के बीच तकनीकी कौशल विकास, नवाचार और टीम वर्क को बढ़ावा देना है। यह प्रतियोगिता छात्रों की इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स क्षमता को प्रदर्शित करने और आगे बढ़ने के लिए एक समाधिक मंच है। अमरनाथ यात्रा 2024 लगातार जारी है। पिछले 14 दिनों में 2,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। शनिवार को 4,669 यात्रियों का एक और जत्था घाटी के लिए रवाना हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता वाले श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि 29 जून को यात्रा शुरू होने के बाद से 2,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा की है। शनिवार को 4,669 यात्रियों का एक और जत्था भगवती नगर यात्री निवास से दो सुरक्षित काफिले में घाटी के लिए रवाना हुए। अधिकारियों ने बताया इनमें से 1,630 यात्री 74 वाहनों के सुरक्षा काफिले में उत्तरी कश्मीर के बालटाल बेस कैंप जा रहे हैं। वो सुबह 3:05 से जम्मू से रवाना हुए। 3,039 यात्रियों का एक दूसरा जट्टा 109 वाहनों के सुरक्षा काफिले में सुबह 3:57 से दक्षिण कश्मीर के नुनवान बेस कैंप के लिए रवाना हुए। केरल में मूसलाधार बारिश जारी रहने के कारण मौसम विभाग ने कोझिकोड़ा, कन्नूर और कासरगोड जिले में के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। 6 अन्य जिले येलो अलर्ट पर है। कोझिकोड़ा में 2 मंजिला इमारत आंशिक रूप से ढह गई है। वर्षा के कारण कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुई है। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप तटों पर मछुआरों को समुद्र में जाने से चेतावनी दी गई है। भारतीय सेना ने लद्दाख में कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती से पहले कारगिल हेलीपैड पर अपने सेना को जानो नामक एक शानदार हथियार और उपकरण प्रदर्शन आयोजित किया। 8 माउंटेन डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल सचिन मलिक इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इसी के साथ यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।